ଅଛନ୍ତି।
वाणी में जिनके सरस्वती है, जीवन में गीता का ज्ञान है, रामायण और महाभारत का रहस्य समझाया है, उषा काल का उगता हुआ सूरज जिनके बोल का इंतजार करता है, संध्या काल का ढलता हुआ सूरज ढेर सारी दुआएं देकर जाता है, ऐसे हमारे उषा दीदी जी का सारा संसार आदर करता है, सारा संसार उनको नमन करता है और उनका हम इस डायमंड हॉल के महासभा में करताल ध्वनि से अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते अभिवादन। दिव्य उच्च बुद्धिमत्ता के धनी, महान तपस्वी और परमात्मा के इस बहुत विशाल कार्य को, अनेक रहस्यों को समझकर, अनेक आध्यात्मिक खोज करके इस संसार में सहज से सहज रीति बाबा का ज्ञान संसार को समझाया, ऐसे उषा दीदी जी हम सभी के समक्ष पधारे हैं। 12 वर्ष की बाल्य अवस्था में ही साउथ अफ्रीका से ज्ञान प्राप्त किया, 1980 में अपना जीवन यज्ञ सेवा में समर्पित किया। आपको स्वयं परमात्मा ने अमृत वेले सेवाओं की नई दिशा दी, टचिंग की, और आपने फिर यज्ञ के इतिहास में सेवा के क्षेत्र में नया मोड़ लाया, जो वीआईपीस की सेवा अनेक अनेक कंपनियों में होने लगी। सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स के द्वारा ये सेवाएं हो रही है और हो गई है, होती रहेगी। वर्तमान समय रामायण और गीता के सत्य सार को चित्र और चरित्र सहित बहुत सहजता से और रुचिपूर्वक आपने प्रस्तुत किया है, अपनी सेवाएं जगह जगह दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय उषा दीदी जी से हम सुनेंगे, स्व प्रति और सर्व के प्रति शुभ भावना कैसे रखनी है, इस विषय पर आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति। बाप दादा, हम सभी बच्चों को समय का इशारा देते हुए अपनी स्थिति को कैसे बनानी है उसकी भी विभिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। विभिन्न बाबा की अव्यक्त मुरलियों में या साकार मुरलियों में बाबा ने हमेशा यही भावना हम सभी बच्चों के प्रति रखी कि मेरे हर बच्चे नंबर 1 में आए या 108 की माला में आ जाए। संडे की मुरली में भी हम सभी ने बाबा के इस प्यार को महसूस किया कि बाबा कोई बच्चे को पीछे देखना नहीं चाहता है और उसके लिए बाबा 108 की कितनी भी लड़ियां लगानी पड़े वो लड़ियां लगाने के लिए भी तैयार है। भावार्थ ये कि बाबा की हम बच्चों के प्रति कितनी ऊंची भावनाएं हैं, कितनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब समय अनुसार हर बच्चा संपूर्णता को प्राप्त करे, लेकिन संपूर्णता की स्थिति को हमने पाया है या हम कितने नजदीक पहुंचे हैं उसकी पहचान क्या, हमें पता चले कि हम संपूर्णता के नजदीक कितना पहुंचे हैं उसकी पहचान क्या होगी। तो उसकी पहचान यही है शुभ भावना, कि हमारे अंदर से स्वयं के प्रति, प्रकृति के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति कितनी शुभ भावना निरंतर प्रवाहित हो रही है। अगर अभी तक भी कहीं न कहीं सूक्ष्म में भावनाओं में किसी भी आत्मा के प्रति कल्याण की कामना के अलावा और कोई भावना है, व्यर्थ की भावना हो, नेगेटिव की भावना हो, तो इसका मतलब संपूर्णता से हम बहुत दूर हैं। संपूर्णता के नजदीक आत्मा की सबसे पहली निशानी यही रहती है कि हर आत्मा के प्रति उसके निरंतर दिल की दुआएं निकलती है, शुभ भावना, शुभकामना प्रवाहित होती रहती है। ये शुभ भावना कितने रूप से हम दे सकते हैं? तो एक तो है मनसा के द्वारा, संकल्पों में शुभ चिंतन करते हुए शुभ भावना को प्रवाहित करना। दूसरा है कि वाणी द्वारा किसी आत्मा के प्रति हमेशा उसकी विशेषताओं को देखते हुए, उनके गुणों को देखते हुए उस बात को वर्णन करने में ये वाइब्रेशंस भी जाते हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा भी जो प्रवाहित होते हैं वो बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं। और तीसरा, प्रैक्टिकल कर्म द्वारा, कि जब हम किसी को प्रैक्टिकल कर्म में किसी भी तरीके से सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, तो ये है हमारी शुभ भावना जो प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा। तो तीन रूप से या तीन स्तर से ये शुभ भावना को हम निरंतर प्रवाहित करते हैं या कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कौन कर सकता है? सबसे पहले तो शुभ भावना देने के लिए भावना क्रिएट कैसे होती है? भावनाएं हमेशा जैसे संकल्प होते हैं वैसी भावनाएं, भावना और संकल्पों का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए किसी ने दुनिया में भी बहुत सुंदर कहा है, वॉच आउट फॉर योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम योर फीलिंग्स, कि हमें अपने संकल्पों के प्रति जागृत रहना जरूरी है, क्योंकि जिस क्वालिटी के संकल्प होंगे वैसी ही भावना बनती जाती है और वो भावनाएं वाइब्रेशंस के रूप में प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए अगर भावनाओं को ठीक करना हो तो पहले संकल्पों को ठीक करना बहुत जरूरी है। तभी पिछले 2 सालों से बाबा की हर मुरली के अंदर किसी न किसी प्रकार से बाबा ने यही हम बच्चों को बताया कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, क्योंकि अभी तक अगर संकल्पों में व्यर्थ चलता रहेगा तो हमारी भावनाएं भी इतनी डिटोरिएट होने लगेगी, या किसी के प्रति शुभ भावना, संकल्प नेगेटिव हो, व्यर्थ हो और फिर हम कहें कि हम शुभ भावना कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए संकल्पों की क्वालिटी और संकल्पों की क्वालिटी के लिए शुभ चिंतन बहुत जरूरी है कि हमारे मन के अंदर शुभ चिंतन कितना चलता है। शुभ भावना तो बाद की बात है, लेकिन पहले मेरे मन के अंदर शुभ चिंतन कितना है ये मुझे देखना है। और शुभ चिंतन का स्टॉक होना जरूरी है। उसी के लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं रोज मुरली सुनना है, मुरली कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि हर रोज जो बाबा सुबह सुबह हमें देते हैं वो है शुभ चिंतन करने का स्टॉक। जैसा चिंतन हम करते जाएंगे, मुरली सुनते जाएंगे, तो चिंतन का स्टॉक बढ़ता जाएगा। हमारे पास इतना अथा चिंतन करने का स्टॉक, तो ताकि व्यर्थ और नेगेटिव उसी के आधार पर नहीं चलेगा, और तब हमारी स्थिति शुभ चिंतक की हो जाएंगी। और शुभ चिंतक हुए तो शुभ भावना प्रवाहित होना आसान है। तो ये सब का आपस में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। अब शुभ चिंतक बनने के लिए भी या शुभ चिंतन करने के लिए भी सबसे पहले स्वयं के प्रति यानी हमारी आत्मिक स्थिति ये फाउंडेशन बनती है। अगर देह अभिमान में होंगे, देह भान में भी होंगे, तो शुभ चिंतन नहीं चल सकता है। शुभ चिंतन तभी चलेगा जब मेरी आत्मिक स्थिति होगी, आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे या देही अभिमानी स्थिति में होंगे तो ही शुभ चिंतन अपने आप चलेगा। देह अभिमान में है, देहधारियों की याद है, और फिर हम कहे कि मैं शुभ चिंतन कर रही थी, ये संभव नहीं है। तो फाउंडेशन में आत्म स्थिति, इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी सामने आए उसको आत्म भाव से देखो, आत्म समझ करके देखो, तो आपकी भावनाएं स्वतः प्रवाहित होगी। तो स्वयं की स्थिति आत्म स्वरूप की हो, आत्म भाव में स्थित होना, तब शुभ चिंतन, और शुभ चिंतन है तो शुभ भावनाएं अपने आप प्रवाहित होंगी। साथ ही साथ ये शुभ चिंतन करने के लिए सबसे पहला खजाना जो हमारे पास होना चाहिए वो ज्ञान का खजाना होना चाहिए। जितना हमारा ज्ञान का खजाना अधिक होगा तो शुभ चिंतन चलना आसान है। अगर ज्ञान का खजाना नहीं है तो जरूर है व्यर्थ का खजाना हो जाएगा वो, यानी फालतू बातें अंदर में भर जाएगी। तो इसलिए ज्ञान का खजाने से पहले संपन्न बनने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जब जैसे दुनिया के अंदर भी कहा जाता है कि शरीर की कर्मेंद्रियों को जितना हम फ्लेक्सिबली मोड़ सकते हैं उतना व्यक्ति हेल्दी माना जाता है। लेकिन मान लो कि यह हाथ अकड़ गया और ये फ्लेक्सिबल हो ही नहीं, मुड़ ही नहीं सकता है, मुड़ना नहीं आता है या इतना अकड़ जाता है तो बीमार माने जाते हैं। इसी तरह जिस दिशा में मैं अपने संकल्पों को मोड़ना चाहूं उसी वक्त मैं उसको मोड़ सकूं, इतना फ्लेक्सिबल हो जाऊं, तब हम स्पिरिचुअली हेल्दी है। लेकिन अगर मैं अपने संकल्पों को मोड़ नहीं पा रही हूं, वही बार बार विचार कोई पूर्व घटना को लेकर के, कल की बातों को लेकर के, वही बातें जैसे अंदर में घर कर गई है तो हटती नहीं है, और मैं चाहती हूं कि मैं शुभ भावना दूं लेकिन मैं अपने विचारों को मोड़ नहीं पा रही, तो जितना हाथ पैर को मोड़ेंगे हेल्दी है, मोड़ नहीं सकते हैं तो बीमार है। तो हम अगर अपने मन को, संकल्पों को जिस दिशा में मोड़ना चाहे मोड़ नहीं सकते, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बीमार है। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से वो बीमार है, जो न चाहते हुए भी बार बार उसका मन उसी दिशा में खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, मोड़ना चाहते हुए भी मोड़ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए जितना हमारे पास ज्ञान के खजाने का स्टॉक है अंदर में, ये खजाना जितना भरपूर होगा, उतना हम अपने संकल्पों को जिस दिशा में मोड़ना चाहे आराम से मोड़ सकेंगे और उतना स्पिरिचुअली हेल्दी रह सकते। तो इसीलिए सबसे पहले मोड़ने की शक्ति। इसलिए बाबा कहते जो रियल सोना होता है मुड़ जाता है। जब उसमें एलॉय मिक्स्ड है तो मुड़ नहीं सकता, हार्ड हो जाता है। ठीक इसी तरह मेरी संपूर्णता की स्थिति कितनी नजदीक है, उसकी पहचान कि मेरे संकल्पों को जिस दिशा में मैं चाहूं आराम से मोड़ सकूं और उसी दिशा में ले जा सकूं उसको, चाहे मुझे जिस आत्मा के प्रति भी या एक बेहद की भावना रखते हुए सारे संसार की आत्माओं के प्रति कल्याण की कामना को प्रवाहित करना है, तो एक नेचुरल रूप से ये प्रवाहित होने लगे, है ना? तो मोड़ने की शक्ति, वही रियल गोल्ड बना है तो मोड़ना आसान है। अगर अभी हमने अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो संपूर्णता बहुत दूर चली जाएंगी मुझसे, और अब समय अनुसार मुझे अपने आप को बार बार देखते हुए भी ये पहचान अपने अंदर महसूस करना है कि मेरी संपूर्णता की स्थिति नजदीक है या नहीं है। तो ये निशानियां हैं कि मेरे विचार मुड़ सकते हैं, मेरा मन मुड़ सकता है। देखो दुनिया के अंदर बाबा कई बार हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे आपके जड़ चित्र भक्ति में भी सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए लोग शुभ भावना से आते हैं, कामनाएं लेकर के आते हैं। अगर वो जड़ चित्र कर सकते हैं कलयुग अंत तक, तो आप तो चैतन्य में हैं। तो इसीलिए हर आत्मा के प्रति आपको ये शुभ भावना को निरंतर प्रवाहित करना है। इसीलिए बाबा ने इस साल में जो पहली मुरली चलाई, जब बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है, दादी जी ने भी अपने अव्यक्त दिन पर 25 अगस्त के दिन जब दादी जी आए थे, उस समय दादी जी ने विशेष यही इशारा दिया था कि अब मनसा सेवा को बढ़ाना है, है ना? वाणी की सेवा हमने बहुत कर लिया, भाषण बहुत कर लिया, लेकिन अभी भाषणा देना है। भाषणा का मतलब क्या होता है? शुभ भावना से अनेकों को फील कराना। दूसरे शब्द में कहे तो शुभ भावना क्या होती है कि हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, चाहे वो बाबा का बच्चा है या नहीं है, लेकिन जिस तरह बाबा के बच्चे जब हमें मिलते हैं, मान लो कहीं बाहर गांव गए और रास्ते में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी हमें कोई बीके मिल जाता है, तो एक अपनेपन की फीलिंग नेचुरल आती है, और अपनेपन की फीलिंग के कारण उसका बैज देखा, अच्छा आप जाते हैं सेंट, अब अपनापन। अगर वो व्यक्ति खड़ा है और आपके पास सीट है, आप सीट पर बैठे, आप तुरंत जगह करेंगे और उस बीके को बिठा देंगे कि बीके अपना भाई है। तो जिस तरह से अपने भाई बहनों के प्रति ये फीलिंग आती है, एक रहम की भावना आ जाती है, तुरंत ही आप उसको जगह करके बिठा देते हैं। अब समय ये है कि बाबा कहे बेहद की वृत्ति हो कि हर आत्मा बाबा का बच्चा है। बाबा की वो बात याद आती है, ये एग्जाम्पल तो आप सभी ने सुना होगा साकार बाबा का, कि जब बाबा के किसी न्यूज़पेपर वाले ने बहुत कुछ उल्टा सीधा पेपर में डाला था और भाई बहने न्यूज़पेपर लेकर के साकार बाबा के पास आए कि बाबा इस व्यक्ति के सामने हमें केस करना चाहिए, वैसे कैसे लिख सकता है आपके बारे में। तो आप सबको मालूम है बाबा ने उस समय क्या कहा था, बच्चे केस नहीं, उस बच्चे को एक टोली का बॉक्स दे के आओ। कितनी शुभ भावना, उसको टोली का बॉक्स दे करके आओ और उसका धन्यवाद करके आओ। सभी हैरान हो गए कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि उसके ऊपर केस नहीं करना है और उसको टोली का बॉक्स देने की बात कही और उसको धन्यवाद देने की बात कही। तब बाबा ने रहस्य बताया कि बच्चे ये आधा पेज जो डाला है उसने पेपर में, ये आधा पेज अगर आप कुछ ज्ञान की बातें डलवाने जाते थे तो कितने हजार रुपए लगते थे, कितना पैसा खर्च करते थे आप लोग, तब भी ये आधा पेज नहीं डाल सकते थे। आधा पेज डालना मतलब, और उसने आधा पेज अगर निंदा ग्लानी जो भी किया हो है ना, लेकिन लोग पढ़ेंगे और वो निंदा की बातें पढ़ने के बाद वो सोचेंगे, देखे तो सही ये संस्था सचमुच ऐसी है, और वो देखने के लिए आएंगे। तो ये बच्चे ने भले गलत बातें डाल करके भी सेवा ही किए हैं, क्योंकि जितने लोग पढ़ करके देखने आएंगे और जब यहाँ देखेंगे कि ऐसी कोई बात है ही नहीं तो वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो वो कितनी आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाने के लिए निमित्त बनेगा, ये तो सोचो। इसीलिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। और आज उसने भले ग्लानी की बातें लिखी है, लेकिन एक दिन आएगा यही बच्चे बाप की प्रत्यक्षता लिखने के लिए भी निमित्त बनेंगे, यही पेपर निमित्त बनेंगे। कितनी शुभ भावना। तब बाबा ने यह स्लोगन दिया था, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, कि अगर वो निंदा नहीं करता था तो लोग पढ़ते नहीं। इसीलिए अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। तो वैसे ही हम सभी के सामने भी जब भी कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई बात आए, और उस अकल्याण में भी अगर हम कल्याण को देख सके तो यही तो शुभ भावना है, कि उसकी बातें सुन करके या पढ़ करके, या ये कोई आकर के बताता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहा था, कर रहा था, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है या उसके प्रति यही निकलता है शुभ भावना, दुआएं दे दो उसको। ये स्थिति अगर आ गई है तो माना मैं संपूर्णता के नजदीक पहुंच रही हूँ, ये पहचान है। लेकिन अगर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि भाई उसने ऐसा किया, ऐसा कहा, और ऐसा कहने के बाद मैं चार बातें उसके बारे में भी बुराई सुना दूं, तो मैं संपूर्णता के नजदीक हूँ या दूर हूँ, क्या क्या हूँ? दूर है ना, नजदीक नहीं। और समय अनुसार अभी हमें दूर जाना है या नजदीक जाना है? नजदीक जाना है। तो इसीलिए हर बात में मुझे कल्याण का भाव दिखाई दे और कल्याण में भी कल्याण दिखाई दे, और मैं उस आत्मा के प्रति भी विशेष योग करके उसको शुभ भावना का दान दूं, देखो वो परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। जरूर परिवर्तन हो जाएगा, गारंटी है, ट्राई करके देखो। मैंने एक विशेष यही प्रयोग किया था कि एक आत्मा के साथ में ऐसा बोलचाल हो गया, उस समय डिस्टरबेंस जरूर हुई माइंड में। ये नहीं कहती हूँ डिस्टरबेंस नहीं हुई सुन करके बातें, जब मालूम पड़ी तब। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, और उस समय यही अंदर में आया कि अमृत वेले उसको विशेष योगदान दूं। और जब मैंने उसको विशेष योगदान दिया, उस आत्मा को बाबा के सामने इमर्ज करके, बाबा के सामने जैसे उस आत्मा से क्षमा मांग ले कि चलो तुमने जो कहा है ना, और इस तरह से जब क्षमा मांग करके मैंने उसको योगदान दिया, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, दूसरे ही दिन उसका मुझे रिजल्ट मिलता है कि वो व्यक्ति आकर मुझे सॉरी करके जाता है, सॉरी करके गया। तो ये समय है प्रयोग करने का, न कि नेगेटिव विचार चलाने का कि भाई उसने ऐसा कहा इसलिए मैं भी दो चार शब्द और जोड़ करके कह दूं। नहीं, ये मेरी संपूर्णता के नजर, और ये बाबा नहीं चाहता है अभी समय अनुसार। बाबा अभी ये चाहता है कि मैं 108 की माला का मणका बनूं। ये बाबा की भावना है हमारे प्रति, हर एक ब्राह्मण के प्रति ये भावना है बाबा की। जब बाबा मुझ में इतनी भावना रखता है तो मैं अपने आप को अपने कर्मों से या अपने बोलचाल से या अपने मनसा संकल्पों से नीचे क्यों उतारती हूं? जितना हम नेगेटिव सोचते जाएंगे, आप सोचो, एक कल्पना करो कि जितना नेगेटिव कोई आपको, क्योंकि समय अनुसार बाबा ने कहा है पेपर चारों ओर से आएगा, और जब चारों ओर से आएगा तो आपको अधिकतर ये बातें सुनने की मिलेगी, क्योंकि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दुनिया के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना टेंशन है कि आप भले निर्दोष होंगे लेकिन लोग आपको दोषी मान करके भी उल्टा सीधा बोलेंगे आपके लिए। और जब आपको पता चलेगा कि आपने उसने मेरे लिए ऐसा बोला, और हम भी नेगेटिव और व्यर्थ चलाना चालू करेंगे, तो जो बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए अंत समय, हर परीक्षा को पास करने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, वो बहुत काल का अभ्यास तो मेरा कौन सा हो रहा है, व्यर्थ सोचने का? तो जो व्यर्थ सोचने का बहुत काल का अभ्यास मेरा हो रहा है, वो मुझे अंतिम समय डिप्रेशन का शिकार बनाएगा या मुझे संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए निमित्त बनेगा? और उस समय मैं किसी को दोषी नहीं बना सकती हूँ कि इसने ऐसा कहा इसलिए मेरे को भी ऐसा सोचना पड़ा। बाबा कहेगा ये तुम्हारा कर्तव्य तो नहीं, उसने किया, जरूर उसकी मनस्थिति नीचे थी, तो तुम उससे भी नीचे आ गए, ये कहां की समझदारी हो गई। भावार्थ ये कि शुभ भावना जब देने की बात आती है तो हमें अपने आप को बहुत ऊपर उठाना होगा, इतना ऊपर उठा दे जैसे कोई व्यक्ति एक ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है तो काफी एरिया उसको दिखाई देता है, नीचे ग्राउंड पर खड़ा रहेगा तो बहुत लिमिटेड एरिया दिखाई देगा। इसी तरह मुझे भी अपनी मानसिक स्थिति को इतना ऊपर उठाना है ताकि मुझे उस कमी कमजोरी, जैसे कोई प्लेन से देखता है नीचे तो खड्डा थोड़ी दिखाई देता है, कांटे लगे हैं, कांटे हैं रास्ते में, ये कुछ नहीं दिखाई देता है, इतनी सुंदर हरियाली दिखाई देंगी, ये नहीं दिखाई देगा खड्डे हैं, कांटे हैं, ये तो नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा दृश्य। ठीक इसी तरह मुझे अपनी मानसिक स्थिति को इतना ऊपर उठा देना है कि मुझे उस व्यक्ति की कमी कमजोरी दिखाई न दे और उसकी विशेषताएं दिखाई देने लगे, इतना सुंदर उसका आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा जब हम बच्चों को देखते हैं वतन के अंदर तो हमें ये स्वरूप में थोड़ी देखते हैं, जब गुलजार दादी या कोई भी संदेशी ऊपर देखती है, एक सभा देखती है, तो वो सभा कौन सी, ये सभा देख रही होंगी? नहीं है ना, वो हर आत्मा के जो संपूर्ण स्वरूप है, आदि अनादि स्वरूप जो है, वो संपूर्ण स्वरूप में हर एक को बाबा देखते हैं। इसीलिए तो बाबा इतना प्यार करते हैं हमें, तो हमें भी हर आत्मा को अपने आदि अनादि संपूर्ण स्वरूप में देख करके, है ना, उस रूप से उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, यानी इतनी बेहद की वृत्ति मेरी अंदर में हो, जितना हद में हम आएंगे तो हमें खड्डे भी दिखाई देंगे, कांटे भी दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देंगे, वो भी, हर बात में कमजोरी या कमी महसूस होने लगेगी। ये आत्मा में ये कमी है, ये आत्मा में ये कमजोरी है, तो मेरी बुद्धि या वृत्ति ऊपर उठ नहीं पाएंगे। और इस सीजन की पहली मुरली में बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि वृत्ति द्वारा, वृत्ति को परिवर्तन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस को परिवर्तन करना, ये स्वरूप अब बाबा मेरा देखना चाहते हैं। तो जब ये स्वरूप मेरा देखना चाहते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि हम अपनी वृत्ति को ऊपर उठा लें। और उसके लिए जितना अंदर में दुआओं का खजाना अपने पास होगा, देना शुरू करो। देने से बढ़ता है। जब बाबा ने भी ये हिसाब हमें सिखा दिया, ये मैथमेटिक्स हमें सिखा दिया कि देने से बढ़ेगा। और दूसरा तरीका बढ़ाने का सुनाया, बिंदी लगाओ तो बढ़ेगा, जितनी बिंदी लगाते जाओ बढ़ता जाएगा खजाना। तो हमें भी, चाहे कोई 100 बार बुरा व्यवहार करता है, बिंदी लगाते जाओ तो आपका खजाना तो बढ़ता जाएगा। आप तो कितने भाग्यवान बन जाएंगे, है ना? आज एक डॉक्टर होता है, जब उसने पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन किया तो उसको पता है कि पेशेंट को ये ऑपरेशन के बाद कितना दर्द हो सकता है, उसको एहसास है ना? लेकिन वो जब पेशेंट के पास आता है तो क्या कहता है, क्या कहता है? अरे कल से तो, आज थोड़ा तकलीफ हुई होगी, लेकिन कल से तो आप एकदम दौड़ना चालू कर देंगे, आप एकदम देखना कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे बात माना, कितना हिम्मत देना, जबकि अंदर सब कुछ जानना। जैसे ही दूसरे दिन आता है डॉक्टर और पूछते हैं रात ठीक गई, तो वो पेशेंट की 10 कंप्लेंट की लिस्ट होंगी, रात में नींद नहीं आई, ऐसा हुआ, यहाँ दर्द हो रहा था, यहाँ ऐसा हो रहा था, जलन हो रही थी, ये हो रहा था, वो कितनी बातें कहते हैं। और डॉक्टर अंदर में जानता है सब कुछ हुआ होगा उसको, फिर भी क्या कहते हैं, 1-2 दिन चलेगा, लेकिन देखना आप, फिर जब ठीक हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। माना 10 दिन के बाद जो स्थिति आने वाली है, वो तीसरे दिन उसको विजुअलाइज कराना सिखा देता है। और जैसे वो विजुअलाइज करना आरंभ कर देता है, तीसरे दिन डॉक्टर, हाँ ठीक था, आज तो ठीक था, मेंटली उसको जो कन्विंस कर दिया गया तो ठीक हो गया, है ना? उसको वो फीलिंग नहीं आई और ठीक होने लगा। तभी तो कई बार डॉक्टर जब बी केस को देखते हैं तो क्या कहते हैं, चमत्कार है, ऐसा तो नहीं होता है, आप लोगों को कैसे दर्द नहीं हुआ मालूम नहीं। नहीं तो दूसरे बाहर वाले अगर होते थे ना, कितने उनके कंप्लेंट्स होती थी, लेकिन आप लोगों के यही तो एक बात है कि आप लोगों को दर्द फील नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ एक तो परमात्मा शक्ति है। हम अपने शरीर पर भी शुभ भावना का या प्योर वाइब्रेशंस का या एकदम पावरफुल वाइब्रेशंस का प्रयोग करते हैं, तो अपने शरीर पर भी प्रयोग करते हैं, और अपने शरीर पर करते हैं तो साथ साथ में दूसरे के साथ, दूसरे के ऊपर भी शुभ भावना का रिजल्ट दुनिया में भी देखा गया है कि जब शुभ भावना कोई किसी के प्रति रखता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। जब रिजल्ट निकलता है, इसीलिए तो आजकल अभी दुनिया में भी इस बात की जागृति आने लगी है कि लोग अभी इस प्रकार की किताबें लिखना आरंभ कर रहे हैं कि पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ अपने पॉजिटिविटी, ये किताब लिखने लगे हैं। यानी एक जागृति दुनिया में भी आ रही है। तो हम बच्चों के अंदर तो कितना उसका प्रैक्टिकल स्वरूप होना चाहिए, है ना? तब हम कर सकेंगे। दूसरी बात, के शुभ भावना कौन दे सकता है? शुभ भावना वही दे सकता है जो अंदर से भरपूर होगा, जो अंदर से भरपूर है, संतुष्ट है, जिसकी कोई चाहिए चाहिए की चाह नहीं है, वही दे सकता है। अगर मुझे ही अपेक्षा है फलाना मेरे बारे में अच्छा सोचे, फलाना मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, फलाना मेरे लिए ये अच्छा कहे, ये अपेक्षा जितनी रखेंगे तो अपेक्षा से कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब अपेक्षा से नहीं मिलता है तो और भी फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। इसीलिए अपेक्षा रखने के बजाय मैं अपने व्यवहार के अंदर इतना सुंदर पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन फैलाऊं ताकि उस आत्मा के अंदर भी परिवर्तन अपने आप हो जाए, है ना? वो अपेक्षा न रखे लेकिन उसको महसूस करे, उस एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करो। जितनी एनर्जी फ्लो होने देंगे, ये एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, शुभ भावना शुभ कामना की इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जितनी ये फ्लो होने लगेगी उतना ही आपको इतने सुंदर रिजल्ट्स महसूस कराएंगी। लेकिन जितना उसको फ्लो नहीं होने देते, उसको बांध के रख देंगे अंदर में, भावनाओं को बहने नहीं देते हैं, प्रवाहित होने नहीं देते, उतना ही स्वयं को भी तकलीफ मिलती है और हमारे आसपास वालों को भी हम तकलीफ देते हैं। तो इसीलिए बाबा अभी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि वाणी द्वारा भी किसी का उमंग उत्साह बढ़ाओ, किसी को हिम्मत दो, किसी को साहस प्रदान करो, निर्भय बनाओ। वाणी के अंदर ऐसी भासना एक दूसरे के प्रति देना शुरू कर दो। और इसी तरह कर्म या व्यवहार के अंदर भी, है ना, किसी को भी हम बहुत अच्छे तरह से उसको व्यवहार करते हुए मदद दे, सहयोग दे, स्नेह दे, ये देना आरंभ करेंगे। ये चीज जब हमने अपने व्यवहार में प्रवाहित किया, इसी का नाम है शुभ भावना। शुभ भावना खाली मनसा से नहीं होती है, हमारे बोल से भी होती है, कर्म से भी होती है, व्यवहार से भी होती है। और अगर व्यवहार में प्रैक्टिकली दिखाई न देता हो तो कोई नहीं मानेगा कि आप मनसा के अंदर शुभ भावना रख करके उसके प्रति योगदान कर रहे हैं, कोई नहीं मानेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल कर्म, प्रैक्टिकल व्यवहार, यही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स थॉट्स, है ना, कि वो प्रत्यक्ष सबूत है हर हरेक के लिए कि हाँ व्यवहार के अंदर भी इसका व्यवहार हरेक के साथ बहुत मधुरता वाला है, बहुत प्रेम स्नेह का है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी शुभ भावना है, एक 1-to-1 लेवल पर शुभ भावना है हमारी। बाकी खाली हम उसके लिए योगदान करते रहे और प्रैक्टिकल व्यवहार में जब आए तो व्यवहार के अंदर वो मधुरता न हो, वो स्नेह न हो, सहयोग देने की भावना न हो, तो कैसे माने के हम योग उदान दे भी रहे हैं उसको। कहने से नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल कर्म में आने की चीज है। और मनसा तो बहुत दूर की बात है, बहुत ऊंची स्थिति है। इसलिए प्रैक्टिकल कर्म में होंगी, व्यवहार में होंगी, बोलचाल में होंगी, तब जाकर के मनसा की ये स्थिति बनेगी शुभ भावना की। अगर नीचे के लेवल पर नहीं है तो ऊपर के लेवल पर आप पहुंचेंगे ही कैसे। तो ये एक प्रकार का इमेजिनेशन हो जाता है कि हम शुभ भावना सबके लिए दे रहे हैं शुभ भावना। वास्तव में प्रैक्टिकल में ये वाइब्रेशंस नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में ये वाइब्रेशंस तब जाएंगे जब हमारे व्यवहार कर्म में है ना, तभी वो आत्मा भी हमें दुआएं देना शुरू करेंगी। हम खाली शुभ भावना देते हैं लेकिन वो रिटर्न में हमें दुआएं दे देंगे। इतनी पावरफुल रीति से वो वापस आता है हमारे पास। माना हम शुभ भावना जब अपने कर्म व्यवहार में देते हैं, वो दुआएं देकर लेकर के वापस आती है हमारे पास। इतना पावरफुल उसका, जिसको दुनिया में कहते हैं वापसी आना अपने तरफ, इतना पावरफुल रीति से वो वापसी हमारे तरफ आती है। और वही दुआएं अंतिम समय हमें हमारे लिए एक लिफ्ट का काम करेगा, जो कई प्रकार की परिस्थितियों को पार करना, सहज रीति से ओवरकम करना, उसको ऊपर चले जाना, उपराम हो जाना उससे, वो हमें मदद करेगा, नहीं तो अटक जाएंगे, नीचे फंस जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और तब व्यक्ति को सचमुच में जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन ऐसा आएगा कि ये क्यों मेरी गाड़ी अटक गई है, हमने तो किसी के लिए ऐसा सोचा नहीं, किया नहीं, फिर ये गाड़ी कैसे अटक गई। नहीं, अटक इसीलिए गई क्योंकि कर्म में, व्यवहार में नहीं था, इसीलिए अटक गई, क्योंकि वहां पर भी चुकाना जरूर है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य यही है कि अब बस एक ही अंदर में भावना रखो, हम दाता के बच्चे हैं, देना है, देना है मुझे, देना है, और देते जाओ, जो आपसे देने का संभावना हो वो देते जाओ। कोई चीज वस्तु की आश नहीं है दुनिया के लोगों को भी। हर इंसान आज अगर प्यासा है, भूखा है, तो स्नेह का, मधुर व्यवहार का, उसी का प्यासा और भूखा है। और जब कोई प्यार से उसके साथ व्यवहार कर देता है, स्नेह दे देता है, उसी से उस आत्मा को अंदर में ठंडक मिलती है, राहत मिलती है। एक जैसे कि अग्नि के ऊपर जल, शीतल जल के छींटे डालने वाली बात हो जाती है, और तब वो झुकेगा, वो इष्ट के रूप में समझेगा आपको। तो अब बाबा कहते हैं ये इष्ट के स्वरूप का साक्षात्कार, क्योंकि अभी पर्दा उठने का समय होने लगा है। जब पर्दा उठने का समय होने लगा है, और अगर हम मूर्तियां तैयार ही न हो तो किसका साक्षात्कार करेंगे लोग, है ना? और भगवान बाप हमसे स्पष्ट हो, हमसे प्रत्यक्ष होगा, तो हर एक ब्राह्मण का चेहरा कितना खुश नमा दिखाई देना चाहिए, खुशी बांटो, यही चीज चाहिए दुनिया की आत्माओं को, जितना किसी को खुशी दे सकते हैं। ऐसे वचन न निकले जो किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे, लेकिन ऐसे वचन निकले जो किसी को खुशी मिले, आनंद मिले, उमंग उत्साह मिले, तब संपूर्णता हमारे नजदीक आएगी और हम उस प्रत्यक्षता के पर्दे को उठाने के लिए निमित्त बनेंगे, और बाबा हमारे द्वारा वो कार्य कराएगा। बाबा को इसीलिए 108 आत्माएं ऐसी चाहिए। रविवार की मुरली को जब याद करते हैं तो बाबा ने कहा 108 आत्माएं ऐसी विशेष चाहिए जो प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगी, और निमित्त बनने का भाग्य एक बहुत बड़ा है 108, और 108 से ज्यादा होंगे तो लड़ियां लगेगी, तो कम से कम हम उस 108 में आने का प्रयत्न तो करें, क्योंकि निमित्त बनना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बनना तो खुली ऑफर है, कोई भी आत्मा कहां भी होंगी, कोई विश्व के कोई भी कोने में बैठी होगी, लेकिन जब प्रत्यक्षता का पर्दा उठेगा तो उसका साक्षात्कार सारी दुनिया की आत्माओं को होगा। इसलिए ये मत समझो कि हम तो दुनिया के कोने में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, बाबा हमारे द्वारा कैसे प्रत्यक्षता कराएगा या हम कैसे निमित्त बनेंगे। जो मधुबन में है या जो आगे हैं, बड़े हैं, वही निमित्त बनेंगे। नहीं, दुनिया के किसी गांव के किसी भी कोने में बैठे होंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया तो आपका साक्षात्कार दुनिया की आत्माओं को बाबा कराएगा, और आप उन लोगों के लिए इष्ट बन जाएंगे, और तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने लगेगा। तो अब बाबा हम बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं, यही एक भावना है बाबा की हम सभी बच्चों के प्रति, कि अभी हर बच्चा तैयार हो जाए उसके लिए। इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों से पूछते थे कि बच्चे एवर रेडी बने हो, एवर रेडी बने हो। माना ये मानसिक स्थिति हमने अपनी तैयार की है, या अभी तक अपने ही झमेले में, अपने ही व्यर्थ में, अपने ही नेगेटिविटी में, उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी ये अभी हम ब्राह्मणों को शोभा नहीं देती है, इतना ज्ञान मिलने के बाद इतना समझदार हो गए, हम इतनी मैच्योरिटी के लेवल में आ गए कि अब ये छोटी छोटी हरकतें जो है ये बाबा को भी अच्छी नहीं लगती है और बाबा भी नहीं चाहता है कि ये हरकतों में अभी तक भी हम अपने टाइम को बिताते जाए। अब बाबा चाहते मेरा हर बच्चा समझदार, मैच्योर और उस लेवल पर आ जाए, किसी ने कुछ भी बोला माफ कर दो। जैसे दुनिया की आत्माएं, कोई अज्ञानी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करते, गाली देते हैं तो आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? यही समझते ना, अज्ञानी है बेचारा, बोल रहा है ना, शुभ भावना दे दो, छोड़ो कोई बात नहीं। तो अज्ञानी के प्रति आप लड़ने नहीं जाएंगे या उसके प्रति बोलने नहीं जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, या उसकी बात फील नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है वो अज्ञानी है। लेकिन ऐसी ही हरकत अगर किसी ज्ञानी ने कर दिया तो आप उसको क्षमा कर सकते हैं। उस समय भी ये समझो कि उसके स्वभाव संस्कार से वो कितना मजबूर है, ये छूटना चाहते हुए भी छूट नहीं पाया है तो उसको मेरी मदद की आवश्यकता है। तो उस ज्ञानी व्यक्ति के प्रति, भाई ये हमारा ही परिवार का सदस्य है, उसको मेरे सहयोग की आवश्यकता है। तो आपके शुभ भावना का दान जब उसको मिलेगा तो हो सकता है कि वो अपने उस संस्कार से भी मुक्त होकर के ऊपर उठ जाए। जैसे किसी की टायर फंस गया हो, कि कोई गाड़ी का पहिया फंस गया हो कीचड़ में, निकल नहीं रहा हो, है ना, छींटे उड़ा रहा है चारों तरफ, वो जैसे जैसे टायर घुमाते हैं, इंजन चलाते हैं तो टायर घूमता है तो कीचड़ उछालता है, फंसा हुआ है ना, तो उसके एक धक्का दे दिया तो निकल जाता है, निकल जाता है तो चल पड़ती है वो गाड़ी। तो इसी तरह वो आत्मा भी मजबूर है अपने संस्कार से, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, इसलिए वो कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। तो उसके प्रति रहम आएगा या उसके प्रति और बुरी भावना आएंगी? उसको भी एक लिफ्ट दे देने की आवश्यकता, इतने सहयोग की आवश्यकता है। अगर हम वो सहयोग उसको दे देते हैं, शुभ भावना का ही सहयोग चाहिए या उमंग उत्साह के बोल के सहयोग चाहिए, और वो दे दिया तो वो पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ेगा, और वो बढ़ जाएगा तो जिंदगी भर आपको दुआएं नहीं देगा, गाली थोड़ी देगा फिर बाद में। वो आगे बढ़ने लगा तो वो हमेशा के लिए यही समझेगा कि इस व्यक्ति की भावना से, शुभ भावना से मैं आज यहाँ तक पहुंच गया, तीव्र पुरुषार्थ कर पाया, तो वो हमेशा के लिए आपको दुआएं देगा कि मैं तो फंसा पड़ा था अपने स्वभाव संस्कार के अंदर, लेकिन इस आत्मा ने, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सब मेरे से दूर भागे, लेकिन ये व्यक्ति है जिसने आकर के मुझे एक लिफ्ट दे दी, मदद दे दी और मुझे बाहर नहीं, उसको थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है, वो दे दो तो देखो किस तरह से वो तीव्र पुरुषार्थ करने लगे। और उसके तीव्र पुरुषार्थ को देख करके, जैसे गाड़ी वो कीचड़ से निकल जाती है तो फास्ट भागती है ना, तो फास्ट भागने लगेगा, तो वो उसको फास्ट भागते हुए देख करके आप पीछे नहीं रहेंगे, आप उससे भी आगे जाएंगे, ये गारंटी है बाबा की, ये गारंटी बाबा की है। क्योंकि बाबा भी जब ये देखता है कि इसने इस आत्मा के स्वभाव संस्कार को न देख करके उसको फिर भी सहयोग दिया, तो वो आत्मा महान हो जाती है, बाबा के जैसे दिल तख्त नशीन हो जाती है, वो आत्मा को विशेष बाबा प्यार करता है, सूक्ष्म में महसूस होता है कि बाबा मुझे विशेष प्यार कर रहा है, ऐसा महसूस होगा। तो ये है शुभ भावना, शुभ कामना देना, खाली कोई फंसा है, ये कर रहा है, गाली दे रहा है, उसको खाली मैं इमर्ज करके ये करती रहूं, लेकिन उसको किसी तरह से सपोर्ट न दूं, मदद न करूं, तो ये शुभ भावना नहीं हुई। तो शुभ भावना का मतलब है कि थोड़ी उसको लिफ्ट चाहिए, दे दो, देखो किस तरह से फिर वो मदद करेगा आपको, किस तरह से मदद का पात्र बन जाता है और हमेशा के लिए थैंक्स मानता है। तो इसीलिए शुभ भावना देने के लिए अंदर की स्थिति भरपूरता की चाहिए। अंदर की स्थिति जितनी भरपूरता की होगी तो हमारा स्वरूप संतुष्टता का होगा, प्रसन्नता का होगा, तो संतुष्ट मणि प्रसन्नता के स्वरूप में अगर होंगे तो हम अपने आप वो शुभ भावना को प्रवाहित निरंतर करते रहते हैं और हमें खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं, चलते फिरते हर कर्म करते हुए भी हमारे पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस निरंतर फैलते जाए। ये है शुभ भावना, शुभ कामना, स्वयं प्रति, दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति निरंतर उसको प्रवाहित करते हुए बहते रहने दो। ये बाबा अभी हम बच्चों का स्वरूप देखना चाहते हैं। तैयार हो? ये स्वरूप बनाने के लिए तैयार हो? तो कल बाबा आएंगे तो हम कम से कम एक दृढ़ संकल्प तो बाबा के सामने करके दिखाएंगे ना कि हाँ बाबा, अभी आप जो चाहते हैं हमसे वो स्वरूप हम अपना जरूर दिखाएंगे। दिखाएंगे ना सभी? ओम शांति। कृष्ण।